Market Mantra. Namaskar and welcome to the Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Sonu Sood.
Dhanyavad Lalima. Namaskar Shrotao. Market Mantra mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum aarthik, vyaparik aur share bazaar ki taza khabrein aap tak layenge aur un par charcha bhi karenge. Charcha ke liye aaj hamare studio mein aamantrit hai aarthik visheshagya Vishal Dahiya. विशाल जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार सोनू जी, थैंक यू.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग.
थैंक यू सोनू. लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. वेल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस एंड विद लॉसेस. सेंसेक्स फॉल्स 721 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,005. National Stock Exchange records highest number of IPOs in Asia.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. प्रमुख घरेलू सूचकांक गिरावट में रहे. सेंसेक्स 721 अंक टूट गया. निफ्टी 24,005 पर हुआ बंद. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया में सबसे अधिक IPO रिकॉर्ड किए.
Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple development projects in Delhi. He inaugurated around 1,700 newly constructed flats for the dwellers of JJ clusters and handed over keys to eligible beneficiaries in Ashok Vihar in the national capital. Mr. Modi also interacted with the beneficiaries of flats and inspected the newly allotted flats. The inauguration of newly constructed flats will mark the completion of the second successful in-situ slum rehabilitation project by the Delhi Development Authority. The project is aimed at providing the residents of JJ clusters with a better and healthier living environment, equipped with proper amenities and facilities. On the occasion, Prime Minister Modi also inaugurated two urban redevelopment projects, the World Trade Center at Nauroji Nagar and the General Pool Residential Accommodation, GPRA, Type 2 Quarters at Sarojini Nagar. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said that wide range of development works launched today will boost the ease of living for the people of Delhi. He added that these endeavours reflect the government's unwavering commitment to nurturing future generations by empowering them with knowledge, innovation and opportunities. The Prime Minister also inaugurated the Central Board of Secondary Education's integrated office complex at Dwarka, built at around 300 crore rupees. The Prime Minister laid the foundation stone of three new projects in Delhi University worth over 600 crore rupees. Then he laid the foundation of an academic block in the eastern campus of at Surajmal Vihar in East Delhi and an academic block in the western campus at Dwarka. Mr. Modi also laid the foundation stone of Veer Savarkar College at Roshanpura, Najafgarh. So Vishal, budget is coming on the 1st of February. I relate this to the budget because each time the country moves forward in development, as the Prime Minister says, it's sabka yogdan hai jo tax pay kar rahe hain. Ek ek insaan jo tax deta hai, uska paisa development mein ja raha hai. And it's a new India in the making.
Well, indeed, and you know, inauguration of these projects do highlight to a kind of a bouquet which the government is looking at. As I've been pointing out time and again around the budget time that, you know, this government's one one policy which has remained steadfast, and there seems to be no change in that, is the focus on the social sector, is the focus on infrastructure. And both things have to go hand in hand. If you look at these projects, they are catering to almost all strata of the society, to the economically weaker section, to the government employees, to education sector as well. So clearly, infrastructure is the key element here. And when the budget is rolled out in less than a month's time from now, we're likely to see a renewed focus on CAPEX with a focus on, strong focus on infra projects.
So, ये election year था, so आपको लगता है कि अभी जरूरत भी पड़ेगी कि एकदम से accelerate किया जाए ताकि जो हमारा target इस वर्ष के लिए रखा गया है 11 करोड़ रुपए का काफी enhanced target है पिछले वर्ष के मुकाबले capital expenditure का ताकि वो पूरा हो जाए मार्च तक.
बिल्कुल देखिए और इस साल दो जो budget document पेश हुए, एक जो फरवरी में आया और फिर उसके बाद नई सरकार बनने के बाद जो बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से, उनमें भी एक 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 तारतम्यता थी आपस में देखा जाए तो, जो है कि वो एक दूसरे के पूरक के तौर पे सामने आ रहे थे. चुनाव से पहले सरकार ने जो डॉक्यूमेंट पेश किया था उसमें साफ नजर आ रहा था कि भाई अगले 5 साल तक सरकार अगर चुन के वापस आती है तो किस तरह की पॉलिसी डिसीजंस होंगे, क्या एरियाज ऑफ फोकस होंगे. और चुनाव के बाद जो बजट पेश किया गया उसमें जो 11 लाख करोड़ की फिगर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उससे वो रिन्यूड फोकस और क्लियर हो गया कि भाई पिछले साल 10 लाख करोड़ हुआ था, इस साल 11 लाख करोड़ है. तो मुझे लगता है कि ऐसे धीरे धीरे करके कदम बढ़ाते रहेंगी सरकार, क्योंकि अंततः पैसे की जरूरत, सरकार के खर्च करना जिसे कहा जाता है, सरकारी पैसा जिसे खर्च करना कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे ज्यादा जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर में है. और वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है. और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल ये नहीं है कि आप सड़क बना दें या फिर केवल आप एयरपोर्ट बना दें, वो भी बन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो हम नए मकान बनाने की जो स्कीम्स हैं, लोगों को, गरीब लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को भी जो एक सुविधा दी जाती है जिसे लोन सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन कहा जाता है, वो उसकी बात हो रही है. एजुकेशन सेक्टर में आप एम्स बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग से ग्रांट देना. हेल्थ में कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा सबक सभी देशों ने और सभी इकोनॉमीज ने और खासतौर पे हमने भी जो सीखा वो ये कि हेल्थ सेक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर रिन्यूड फोकस होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि जब बजट डॉक्यूमेंट हम पढ़ना शुरू करेंगे या निर्मला सीतारमन संसद में वो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू करेंगी तो ये सब सेक्टर्स होंगे जिन पर रिन्यूड फोकस होगा. और रूरल डेवलपमेंट को भी ना भूला जाए, वो इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण.
तो जैसे आपने कहा कि क्वांटिटेटिव की कितना फिस्कल बजट है, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी क्या है, कहां कहां वो खर्च,
क्वालिटी क्या है, किन इलाकों में खर्च हो रहा है. वो रुपए का जो केक है वो कट तो रहा है लेकिन वो बट कहां कहां रहा है.
जी बिल्कुल. तो आइए चलते हैं अब शेयर बाजार की ओर, उस पर एक नजर डालते हैं. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज काफी गिरावट हुई. अमरीकी डॉलर में मजबूती के बीच हुई मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार में ये गिरावट आई. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की मंदी से 721 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 79,223 पर दर्ज हुआ. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.76% की मंदी से 183 अंक कम होकर 24,005 पर बंद हुआ. क्षेत्रों की बात करें तो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, आईटी और फार्मा क्षेत्र में 1-1% की गिरावट आई. वहीं ऑयल एंड गैस और मीडिया क्षेत्र दोनों 1% की बढ़त में रहे. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था. मिड कैप सूचकांक में 0.33% की गिरावट दर्ज हुई. स्मॉल कैप सूचकांक में हालांकि कोई खास बदलाव नहीं हुआ.
लेट्स टेक अ लुक एट द स्टॉक्स इन डिटेल. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स today ended significant losses due to profit booking amid the strengthening of the US dollar. The 30-share Sensex index at the Bombay Stock Exchange slumped 721 points or 0.90% to 79,223, while Nifty was down 183 points or 0.76% to 24,005. Among sectors, bank, capital goods, IT, pharma down 1% each, while oil and gas, media up 1% each. The broader market indices at BSE The broader market indices at the BSE mirrored the equity market. The mid-cap index fell 0.33% and the small-cap index ended flat. In the Sensex index, 12 companies logged gains while 18 declined. Among the top gainers, Tata Motors rose 3.3%, Titan gained 1.7%, and Hindustan Unilever advanced 1.5%. Conversely, in the top laggards, Zomato declined 4.3%, HDFC fell 2.5%, and Tech Mahindra slipped 2.2%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 20 sectors ended in the negative territory. In the top laggards, focused IT fell 1.4%, information technology declined 1.3%, and tech shed 1.1%. Bankex and capital goods both fell 1.6% each. Among the top gainers, oil and gas surged 1.5% and energy rose 1.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,032 advanced and 1,965 companies declined, while 106 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 88 companies hit their 52-week high, while 15 hit their 52-week low. So the main question, Vishal, would be that after the Sensex touching 80,000, we got a little gung-ho about it, that after a long time it's touched 80, after crossing 84, 85. Where do you see it going? Is it a correction? Which way do you... I know the markets are volatile. That's the nature of the markets. Still, where do you see the markets going from here? And what are the reasons for this little slump of 721 points?
Well, you know, you're right. Markets are volatile, and that's the nature of the stock markets. But consider this as a pause after the New Year party. You know, there was a 3-day rally starting Monday onwards. If you go a little deeper into try and understand what is happening, then we'll find that, you know, this volatility is likely to be there for almost the entire month of January, because of there are 3-4 major factors. I would rather point out 5 of them if I count you know, the dollar's valuation as well. It's at a 2-year high, and dollar remaining at a 2-year high, and the US bond yield also at around 5%, slightly less than that, is a clear indication that investors might be a bit jittery. Investors as in foreign investors. Then there are, you know, the underlying sentiment which drives the market is based on certain indications which come in from various important, you know, decisions, whether they are taken or happenings which keep on happening around us, be it geopolitical situations or other important decisions. So therein comes 4 important things in January. First is U.S. president being presidency being handed over to Donald Trump on 20th of January. That is, you know, going to make markets world over a bit jittery, because people would want to see and assess, investors all over the world would want to see and assess what Trump's policies would be as president, what his first few steps would be, and how he eases into the office and kind of decisions which he takes up, and perhaps follows up on the promises made during his election campaign and all. The second important point is the US Fed policy meeting, which is going to take place somewhere on 27th and 28th of January. Now, that's going to be really important, because everybody is looking at US Fed in terms of whether there will be a rate cut or whether there will be no rate cut. The indications are not very positive so far in terms of there being a rate cut. But perhaps, you know, we might see some easing of stance by the US Fed. So that is going to be really important. Third important thing is Indian budget. India's budget will be presented on 1st of February, as we were pointing out earlier.
Right.
You know, everybody will be, all sectors in the market, in the industry, would be looking forward to see as to what are they getting, what are the focus areas for the government for the next year, how much money is the government going to put in different sectors, key priority sectors which have been pointed out, identified earlier, for example, defense production, space, even, you know, infrastructure, as I was pointing out, rural development also, social sector schemes maybe. So this is going to then drive the market as to how things will happen. What, if any, kind of, you know, benefits certain industries will get, or how will they get it. in various policy decisions. Also very important is that there is going to be a RBI monetary policy meeting in the first week of February. Now, that's almost a month away, but that becomes very significant because now we have a new RBI governor. So will the RBI's stance be changed in certain matters in terms of rate cut, in terms of dealing with the issue of inflation, that is, the core food inflation, which RBI has time and again pointed out is a cause of a bit of a concern. These all factors taken together make the market and the investors a bit jittery and market a bit volatile. So we might see this, this trend in the next few weeks wherein market might go up for 2-3 days, then might go down for a day or 2 days. This volatility is likely to remain. Of course, markets are volatile, but this volatility is likely to remain because there is no strong settled indication on these fronts. And then also the quarter three earnings are going to, stroll in from Monday onwards. So therein also lies, the devil lies in the detail there for the market, which industry, which sector is going to perform which way, whether or not, it has met the expectations. So all these combined taken together, we might be in for a bit of a roller coaster ride for 2-3 weeks. But that should not be a cause of concern because the fundamentals are pretty strong, right. And DIIs are still standing strong there. That is the second thing. And third thing is that looks like, the Indian stock market has matured to that particular level wherein these slight volatilities should not be a cause of concern. So, but yes, it'll be jittery.
So, agar aapko lagta hai ki ye stability rahegi aur jo DIIs hai, wo kafi ek aapne pichli baar bola tha ki wo reedh ki haddi ban gaye hain stock market ki. So sectorally aap hame bata sakte हैं कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं. ऑटो सेक्टर अभी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है. दिसंबर के जो फिगर्स आए हैं, सेल्स फिगर्स, उसके बेसिस पे हमने देखा है कि ऑटो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3 दिनों में. एंड आईटी सेक्टर आल्सो परफॉर्म वेरी वेल येस्टरडे. आई मीन लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज 721 गिरा है तो कल लगभग 1,500 बढ़ा भी था. सो आईटी सेक्टर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, खासकर रुपी के लेवल को देखते हुए, आपको लगता है वो बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर है आईटी सेक्टर के लिए?
बिल्कुल है. और देखिए, आईटी सेक्टर के लिए केवल डॉलर का वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बल्कि आईटी सेक्टर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अमेरिका में आईटी सेक्टर में जिस तरह से भारतीय कंपनियों का निवेश है और अमेरिकी टेक कंपनियों का जिस तरह से भारत में निवेश है, उन दोनों पर किस तरह का असर पड़ता है वो देखना पड़ेगा. तो जरूर आईटी सेक्टर से उम्मीदें ज्यादा हैं. ऑटो की आपने बात की, निश्चित रूप से जो सेल्स फिगर आई हैं वो बहुत उत्साहवर्धक हैं और शायद इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ी सी तेजी बनी हुई है. और क्वार्टर थ्री के जब रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे तो एटलीस्ट उम्मीद है ऑटो सेक्टर से कि जैसे आज ऑटो सेक्टर खेवनहार था मार्केट का, बावजूद इसके कि बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, फार्मा सब जो है रेड में था, लेकिन ऑटो सेक्टर शायद मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा सेक्टर था जो कि पूरा जोर लगा के मार्केट को खींचने की कोशिश कर रहा था. तो शायद आने वाले कुछ दिनों में ऑटो सेक्टर से उम्मीदें की जा सकती हैं, आईटी से उम्मीदें की जा सकती हैं, और मुझे लगता है बैंकिंग में आज जिस तरह की बिकवाली देखने को मिली है वो एक बार के लिए कहा जा सकता है. मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का अगर थोड़ा सा इतिहास आप देखें तो बहुत ही सस्टेन्ड मूवमेंट रहा है, बहुत ही सस्टेन्ड एक इंप्रूवमेंट रही है और पॉजिटिविटी रही है, ग्रीन में रहा है मामला.
एनपीएस बहुत नीचे आ गए,
एनपीएस बहुत नीचे आ गए. तो मुझे लगता है कि आईटी और ऑटो के अलावा बैंकिंग से बहुत उम्मीदें होंगी. और बजट के जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचेंगे और खासतौर पर बजट जब पेश होगा तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी जो है उसमें भी हमें तेजी दिखने को मिल सकती है.
राइट, आइए देखते हैं करेंसी बाजार में आज कैसा प्रदर्शन रहा. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 3 पैसे की मामूली गिरावट से 85.78 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 108.97 पर था. ब्रीफली, ये आप कहेंगे रुपये की वीकनेस है या डॉलर की स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 में 2.9% गिरावट हुई है रुपये में. साउथ साउथ कोरिया के वॉन में 13.8% गिरावट, रशिया के रूबल में 18% गिरावट, टर्की और ब्राजील की जो करेंसीज हैं उनमें 20% गिरावट. सो उसे देखें तो ये कोई खास नहीं लगता है, कोई चिंताजनक स्थिति नहीं लगती है.
देखिए, इसे आप बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसे आधा गिलास भरा कहते हैं, कुछ इसे आधा गिलास खाली कहते हैं, लेकिन आपने जो आंकड़े बताए उस सवाल का जवाब उन आंकड़ों में ही छुपा है. अगर दुनिया भर की करेंसीज के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है और उन्हीं करेंसीज में से एक करेंसी रुपया भी है, तो यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है. अगर रुपए की गिरावट अगर की आप बात करें, तो रुपए की गिरावट अगर बाकी करेंसीज के मुकाबले भी उतनी ही सस्टेन्ड तरीके से होती तो माना जाता कि खोट शायद हमारे सिक्के में. लेकिन मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाए. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट देयर इज टू मच जियोपॉलिटिकल टेंशन हैपनिंग अराउंड द कॉर्नर, यू नो, फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ. वी आर लुकिंग एट 2 year फिगर, एंड फॉर दीज 2 years, the geopolitical tensions around the world have happened in such a way that they have only, you know, catered to the growth of dollar in comparison to other currencies, in almost every currency which you're mentioning. So therein lies the answer, and I believe we might see this sustaining for a bit more period, bit more time. But once, as I was saying, the dollar's, parent country, that is United States, will have the new president. Then picture will be more clear. Let's see what, President Trump has to say about his country's economic policies, trade policies, and of course, other geopolitical policies as well. So they'll clear a lot of picture down the road.
Only thing is that he's sure about America first policy, and we'll have to see which way he softens, to which country.
Yes.
Where the tariffs are softened and where the tariffs are hardened.
Yes, indeed.
All right, let's move on. The Directorate General of Foreign Trade has notified amendment in the Foreign Trade Policy 2023 to bring legal backing in the FTP to make it necessary to do consultation with stakeholders to seek views, suggestions, comments or feedback from relevant stakeholders. It also provides mechanism to inform reasons for not accepting views, suggestions, comments or feedback concerning the formulation or amendment of the Foreign Trade Policy 2023.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है. नई दिल्ली में आज भारतीय स्टार्टअप पर मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की स्टार्टअप यात्रा नवाचारी विचारों वाले असंख्य लोगों के लिए परिवर्तनकारी और उत्साहवर्धक रही है. श्री गोयल ने कहा कि इस वर्ष का स्टार्टअप महाकुंभ एक ऐतिहासिक महाकुंभ बनने जा रहा है. ये विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को प्रस्तुत करेगा. इसके अलावा श्री गोयल ने नवाचारी और परिवर्तनकारी विचारों का सशक्तिकरण करके सरकार की स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने की अटूट वचनबद्धता दोहराई. श्री गोयल ने कहा कि देश के 43% स्टार्टअप्स की संस्थापक महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि विश्व भर में भू राजनीतिक तनाव के बावजूद समग्र निर्यात में वृद्धि हो रही है. इस निर्यात के भविष्य में $800 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाने की संभावना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो इनोवेशन रेवोल्यूशन आई है, स्टार्टअप रेवोल्यूशन भारत में.
देखिए, बिल्कुल स्टार्टअप रेवोल्यूशन आई है भारत में, और ये रातों रात नहीं आई है. ये इसमें बड़ी ही सस्टेन डेवलपमेंट रही है. बहुत यंगस्टर्स की बात की जाए तो जो युवा हैं उनका इसमें काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं है. हमने देखा कि जो सीनियर जनरेशन है, जिन्हें कहा जाए कि 50 साल 60 साल की उम्र के आसपास भी हमने देखे हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि नया स्टार्टअप लेके आए, नया इनोवेटिव आइडिया लेके आए. और अभी हाल ही में एक लिस्ट प्रकाशित हुई थी टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की, तो उस लिस्ट पे मोटे तौर पे नजर डालें तो आपको उसमें दिखाई देंगे 28, 29 साल, 30 साल के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी कंपनियों की स्टार्टअप कंपनी है, और उनकी कंपनीज की जो नेटवर्थ है वो मिलियंस में है, बिलियंस में है, तो यानी कि टैलेंट की कमी नहीं है भारत के पास, जैसे कि पहले भी नहीं था, मौकों की शायद कमी होती थी, अब वो मौके भी मिल रहे हैं, तो इसलिए वो इनोवेशन पे फोकस दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशंस लोग ढूंढ रहे हैं
जी, उसी से कुछ जुड़ी हुई स्टोरी हमारे पास है आईपीओस को लेकर
जी एब्सोल्युटली. वेल द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ आईपीओस इन एशिया एंड द हाईएस्ट इक्विटी कैपिटल रेज्ड इन द प्राइमरी मार्केट ग्लोबली इन द कैलेंडर ईयर 2024 विद 268 सक्सेसफुल आईपीओस अक्रॉस द मेन बोर्ड 90 एंड एसएमई 178 सेगमेंट्स रेजिंग 1.67 लाख करोड़ रुपीस. In 2024, a total of 1,145 IPOs were raised globally compared to 1,271 in 2023. India led the chart with the NSE facilitating 268 companies going public, raising a total of approximately 1.67 lakh crore rupees, including the largest IPO in India and the second largest globally, the $3.3 billion IPO of Hyundai Motor India Limited. This figure includes both main board and SME listings, with 90 companies excluding REITs, invites and FPOs listed on the main board, raising over 1.59 lakh crore rupees, while 178 SMEs collectively raised around 7,349 crore rupees. This increase in activity reflects a strong investor interest and a trend among companies seeking public capital for growth.
और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. चार प्रमुख एशियाई बाजारों में से तीन आज बढ़त में रहे. हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.6% से अधिक लुढ़क गया. उधर दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.8% की तेजी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 1% बढ़कर बंद हुआ. जापान का बाजार आज अवकाश के कारण बंद था. यूरोपीय क्षेत्र पर नजर डालें तो यहां के सभी सूचकांक नकारात्मक रूप दिखा रहे थे. दिन के कारोबार में आखिरी समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.8% की गिरावट पर था. जर्मनी के टैक्स में 0.37% से अधिक की गिरावट थी और लंदन के फुटसी में 0.18% की मंदी थी.
द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज इश्यूड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर मेडिकल टेक्सटाइल्स. मेडिकल टेक्सटाइल्स क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2024 to ensure safety and efficacy of critical products covered under this segment. The order sets stringent quality standards, including testing protocols and labeling requirements for these products. And now a look at the US markets. Well, all three major US indices ended with red yesterday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index each slipped 0.2% and the Dow Jones Industrial Average declined 0.4%.
और अब चले तेल की ओर.
जी, वेल कॉन्ट्ररी टू यस्टरडेज पॉजिटिव नोट, ऑयल प्राइसेस फेल स्लाइटली टुडे बट रिमेन्ड पॉइज्ड फॉर वीकली गेन्स आफ्टर क्लोजिंग एट द हाईएस्ट इन मोर देन टू मंथ्स इन द प्रीवियस सेशन, अंडरपिन्ड बाय पोटेंशियल फर्दर इकोनॉमिक स्टिमुलस इन चाइना एंड लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट्स. ब्रेंट क्रूड एंड डब्ल्यूटीआई क्रूड वर बोथ डाउन बाय 0.26%. ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग एट $75.73 पर बैरल, डाउन. डब्ल्यूटीआई क्रूड वॉज ट्रेडिंग $72.95 per barrel, according to latest reports. And now gold and silver.
सराफा बाजार में सोना आज 0.1% की गिरावट के साथ 77,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. हालांकि चांदी 0.72% बढ़कर 89,730 रुपए प्रति किलो थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.02% गिरकर 77,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.55% बढ़कर 89,661 रुपए प्रति किलो पर था. आपसे बस ब्रीफली हम चाहेंगे आपका कमेंट ऑयल प्राइसेस पर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं भारत के इंपोर्ट बिल के लिए. सो क्या आपको उनका क्या भविष्य दिखाई देता है अब नई जो रिजीम आएगी और नया जो अब रीबैलेंसिंग होगी वर्ल्ड में उसमें?
देखिए, बहुत ही उम्मीद है इस नए साल में 2025 में, जहां तक ऑयल सेक्टर की बात है और ऑयल प्राइसेस की बात है, क्योंकि पिछले दो साल से जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल रहा उसकी वजह से तेल की कीमतों में उछाल आया. उसका सीधा नुकसान भारत जैसी इकोनॉमीज को शुरू शुरू में झेलना पड़ा, लेकिन हमने ट्वीक किया. अब उम्मीद है कि जब नए राष्ट्रपति अमेरिका में होंगे, उनकी नई पॉलिसी होगी और खासतौर पर जिस तरह के सिग्नल रशिया की तरफ से भी आ रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के लिहाज से लगता है कि शायद कुछ अच्छी खबर देखने को सुनने
तो
को
इस अच्छे नोट पर हम सब कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, समय समाप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी शामिल होने के लिए।
थैंक यू।
ऑलराइट फ्रेंड्स, बिफोर वी रैप अप, हियर इज द हेडलाइंस अगेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद लॉसेस। सेंसेक्स फॉल्स 721 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 24,005 एंड National Stock Exchange records highest number of IPOs in Asia. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood and our expert Vishal Daya signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.